ओम शांति। नुमा शाम के समय शांतिवन के प्रांगण में मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से पधारे हुए सभी भाई बहनों का परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता स्वरूप सभी दादियां और हम सभी को, खास सभी जोन को पालना देने वाले आदरणीय संतोष दीदी जी, इन सभी के ओर से आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी बाबा के बच्चे कोई ना कोई अनुभव के आधार से ही आज बाबा के साथ जिंदगी बिता रहे, जी रहे हैं। बाबा से अनुभव होता है, ब्राह्मण जीवन के अनुभव होते हैं, तभी बहुत अच्छी आनंदित जिंदगी बिता सकते हैं। ऐसे हम सभी के समक्ष आज आदरणीय नितिन भाई जी, जो साइंस सेवा केंद्र से हैं, अपने बाबा के अंग संग के अनुभव लेकर पहुंचे हैं। साथ साथ बाबा अव्यक्त होने के बाद भी कैसे बाबा मदद करते हैं, कितने अनुभव उनके जीवन में हैं, आज हम सभी उनसे सुनेंगे। सम्माननीय नितिन भाई जी का परिचय 1962 में साकार बाबा और मम्मा जी की पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1962 से ही आपने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे बाबा के यज्ञ में सेवा देनी है और आपका परम सौभाग्य ऐसा रहा, ब्रिजेंद्रा दादी जी जो साइंस सेवा केंद्र पर रहते थे, उनके अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी वर्तमान समय आदरणीय संतोष दीदी जी उनके अंग संग रहते हैं, तो हम सभी लाभान्वित होंगे आदरणीय नितिन भाई जी से बाबा के संग के अनुभव और साथ साथ अभी की जिंदगी में अव्यक्त होने के बाद भी बाबा के मदद के अनुभव कैसे होते हैं इससे। तो सम्माननीय नितिन भाई जी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमें अपने अनुभव से लाभान्वित करें। ओम शांति।
ओम शांति। जब 1962 में जब ज्ञान में आया, तो आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि कुमार भी कोई बंधन वाला होता है। माताएं और कन्याएं बंधन वाली होती है, मगर मेरा ऐसा पाठ रहा कि कुमार होते हुए भी मैं बंधन में था। तो बाबा को हमने खुदा दोस्त बनाया था, और जहां लौकिक घर था उससे सेंटर 3 किलोमीटर दूर था। तो ये हमारा नियम था, पैदल जाने का और पैदल आने का। और जब पैदल घर से पैदल सेंटर पर जाता था या सेंटर से घर आता था, लौकिक घर आता था, तो बाबा से बातें करके आता था। तो बाबा हमको रास्ते में ही बता देता था कि आज बच्चे दाल में कांदा डाला हुआ है, वो बाबा हमको रास्ते में ही बता देता था। तो फिर घर वालों को बोलता था कि आज दही के साथ चावल खाएगा, आज हमको दाल नहीं चाहिए। ऐसे जितने भी टाइम जाता था, बोलेंगे आज सब्जी के अंदर ऐसा है, आज इसके अंदर ऐसा है, वो बाबा हमको रास्ते में ही सब बता देता था। यहां तक बताता था कि आज जब आप घर में पहुंचेगा तो आज आपकी धुलाई होने वाली है, वो भी बता देता था। तो मैं मेंटली सब बातों में प्रिपेयर था। और यहां तक हुआ, उन्होंने ये भी ट्राई करके देखा रात को बेड नहीं देने का, पट पर सोने का, तो वो भी मैंने यस कर दिया, माना वो भी पार्ट हमने प्ले कर दिया। और फिर अंत में उन्होंने बोला कि अभी अगर सेंटर पर गया तो घर वापस नहीं आना। मैंने कहा मंजूर है। हमने जाके ब्रिजेंद्र दादी को बता दिया कि ऐसा बोला है। दादी ने कहा कोई बात नहीं। दादी ने हमको कुछ पैसे दिए और बोला दूसरा ड्रेस लेके आओ, और एक कुमार भाई था उसके घर में हमको रख दिया, और खाना पीना का प्रबंध सेंटर पर ही था। ऐसे करते समय बीतता गया, 2 मास बीत गए। फिर लौकिक घर से फोन आया कि इनको घर में भेजो, क्योंकि मेरे से जो बड़ा भाई था उसकी शादी था, तो फिर मित्र संबंधी आके पूछेंगे ना कि आपका तीसरा नंबर का बच्चा किधर है, तो वो क्या जवाब देंगे। तो दादी ने बोला वो तो घर में आने को तैयार है, आपने मना किया है। बोलता है नहीं नहीं भले घर में आवे। तो दादी ने कहा मैं भेजती हूँ। और हमको जाते समय दादी ने बोला दरवाजा पर खड़े हो जाना और बोलना मेरी 3 कंडीशन है, अगर वो 3 कंडीशन मंजूर है तो मैं आता हूं, नहीं तो फिर मैं वापस जाता हूं। तो उन्होंने पूछा 3 कंडीशन क्या है। मैं कहा मेरे खाने में कांदा लहसुन वगैरह नहीं डालने का। तो बोलता है ठीक है मंजूर है। मैं रोजाना सेंटर पर सुबह शाम सेंटर पर जाऊंगा, और कहां भी मैं नहीं बोल, लौकिक घर में होगा या तो सेंटर पर होगा या तो कॉलेज में होगा, ये 3 जगह पर मैं कहां ना कहां होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह शाम सेंटर पर जाना। और फिर बता दिया कि जब मैं जॉब करूंगा उसमें जो सैलरी मिलेगी उसमें से मैं आपका हिस्सा दे दूंगा, बाकी मैं किधर खर्चा करता हूं वो आप पूछना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो 3 कंडीशन जो डाली थी वो उन्होंने अब तक अभी तो माता पिता जी दोनों चले गए, मगर वो कंडीशन अभी भी लौकिक भाई देख रहे हैं। तो बाबा के साथ खुदा दोस्त का संबंध होने कारण बाबा हर प्रकार से मदद करता है, और हर चीज बाबा फिर बताता भी है कि आगे चल के ऐसा होने वाला है, वो बाबा बता भी देता है। जब फर्स्ट टाइम साकार बाबा को मिलने का हुआ तो बाबा तो अपने रूम में बैठे थे, और हमारी टीचर हमको लेके गई बाबा के कमरे में। जैसा बाबा के कमरे में पहुंचा, माना बाबा के दरवाजे पर ही पहुंचा और बाबा की गोद में चला गया। बाबा इतना मैग्नेट था, बाबा के पास इतना मैग्नेट था, हमारी जो आत्मा है सीधी बाबा को चिपक गई। ऐसा करते 5-10 मिनट हो गया, फिर बाबा ने पीठ पर बजाया, अरे बच्चे बहुत टाइम हो गया, तो मालूम नहीं पड़ा। बाबा जैसे मैग्नेट की तरह, जैसे सुई जो है ना कैसे मैग्नेट को खींचती है, ऐसा बाबा ने हमको खींच लिया, जो हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं दरवाजे से बाबा के पास कैसे पहुंच गया, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। तो दिन में तो बाबा के साथ मुलाकात हो गई, पहली मुलाकात तो बाबा के साथ हो गई। और उन दिनों में ऐसा सिस्टम था, जो अपना हिस्ट्री हॉल है ना उसके ऊपर टेरेस है, टेरेस पर शाम को पिकनिक होती थी, जो भी पार्टी आती थी तो शाम को बाबा के साथ पिकनिक होती थी। तो जब सभी बैठ गए बाबा ने ऐसे दृष्टि घुमाई, और फिर टीचर को बोला, ब्रह्मणी को बोला, उस समय हम टीचर नहीं बोलते थे ब्रह्मणी बोलते थे, कि एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो टीचर वो ब्रह्मणी ने हमारे लिए बोला कि उसके नाक से थोड़ा खून बहता है, इसलिए हमने उसको कमरे में आराम करने को बोला है। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बच्चे को इधर बुलाओ। तो टीचर कमरे में आ गई और हमको बोला बाबा आपको बुला रहा है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर बाबा के पास गया तो बाबा ने बोला क्या हुआ है। मैंने बताया जब पहाड़ पर चलते हैं ना तो थोड़ी नसकोरी फूट जाती है। तो बाबा ने कहा या बच्चे ने यज्ञ में खून दिया है तो बाबा उसका 1000 गुना करके आपको रिटर्न करेगा। तो बाबा ने कहा 4:45 का योग पूरा होने के बाद आप मेरे कमरे में आना। तो उस समय हमारी आयु 17 बरस की थी तो बच्चे ही थे ना। बाबा ने बोला है हम बहनों के दादियों के कमरे से ऐसे बाबा के कमरे में जाता था। तो फिर वहां जाके जब देखा संतरी दादी खड़ी थी और बाबा ने बोला नितिन भाई आया है उसके लिए लेके आओ। तो एक बड़ा कटोरा था उसके अंदर घी मध और सूखे मेवे जो भी है बादाम काजू इलायची जितने भी सूखे मेवे हैं उसका पिसा हुआ और मध के साथ और घी के साथ हमको बोला जितना दिन तुम मधुबन में है रोज ये पी के जाना। तो हम तो उस समय 10 दिन रहते थे तो हम रोज 10 दिन बाबा के कमरे में जा कटोरा पी के आता था। वो एनर्जी अभी भी चल रही है, बाबा ने दी हुई एनर्जी अभी भी चल रही है। तो बाबा की थोड़ी भी सेवा करते हैं बाबा उसका रिटर्न इमीडिएट उसी समय दे देता है। हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है मगर अगर आप यज्ञ सेवा करते हैं बाबा उसका रिटर्न इमीडिएट कर देता है। और भविष्य में तो भाग्य बनता ही है मगर वर्तमान में भी बाबा हम बच्चों का भाग्य इमीडिएट बना देता है। फिर यज्ञ में रहते हुए उस समय वैसे लौकिक मातृभाषा गुजराती थी तो उन दिनों ने सनसेट पॉइंट पर मैं 1962 की बात कर रहा हूं उस समय सनसेट पॉइंट पर गुजराती में एक संदेश बनाने का था तो हिंदी में हमको लिख के दिया और फिर हमको बोला इसका गुजराती भाषांतर करो और फिर आर्टिस्ट से लिख के लेके आओ बाबा फिर उधर लगा देगा। तो हमने हिंदी का गुजराती में भाषांतर किया। बाबा ने बोला पढ़ के सुनाओ तो हमने वो गुजराती में पढ़ के सुनाया। तो बाबा तो जानी जानहार है मगर बच्चों का स्वमान कैसा रखता है। तो बाबा ने क्या बोला बच्चे बाबा समझता है इसमें कुछ ग्रामर के एक कोई ग्रामर बराबर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा पढ़ा तो वो ग्रामर की करेक्शन थी वो मैंने फिर बाबा को बताया हाँ बाबा इसमें ये ग्रामर की मिस्टेक है। बाबा सब कुछ जानता था मगर बाबा कभी भी ऐसा नहीं बोलता था कि आपने गलत लिखा है आपकी ये मिस्टेक है करेक्ट करो। नहीं बाबा ऐसा समझता है कि इसमें कुछ ग्रामर के कोई मिस्टेक है। तो मैंने बोला हाँ बाबा है इससे मिस्टेक कोई बात नहीं बच्चे उसको करेक्ट करो। फिर हमने वो करेक्शन किया और आर्टिस्ट को बोला ये गुजराती में लिख के दे दो। वो पत्रे का बोर्ड बनाया और फिर बाबा ने कहा अच्छा जाओ बच्चे अभी सनसेट पॉइंट पर लगा के आओ। तो उन दिनों में यज्ञ में इतना कोई व्हीकल नहीं था, बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी में सीमेंट रेती जो भी डालना है और बोट वो सब लेके उस समय जमुना प्रसाद वगैरह थे, जमुना प्रसाद था, विश्वरतन दादा था, वो हम सब गए और वहाँ सनसेट पॉइंट पर बोर्ड लगा के आ गए। फिर जैसे बाबा को लच्छूबेन ने संदेश दिया कि ये लोग आ गए हैं बोर्ड लगा के आ गए हैं तो बाबा ने कहा बच्चों को बुलाओ सभी बच्चों को बुलाओ। और फिर बाबा अपने हाथों से हर बच्चे को टोली खिलाते थे, तो थकावट कहाँ भाग जाती थी मालूम ही नहीं पड़ता था। अरे बाबा इतना, कोई भी सेवा करेगा बाबा इतना प्रेम करता था, और बाबा हमेशा तैयार, कोई भी अगर बाबा को जाके पूछे बाबा ये काम हो गया है तो बाबा इमीडिएट उठता था और वो काम देखता था और फिर बोलता था ठीक है, और फिर बाबा सब बच्चों को टोली देता था। यज्ञ के अंदर पहले मजदूर नहीं रखते थे, जो भी यज्ञ में आते थे जो पेंटिंग का काम है या ये सीमेंट डालनी है या कुछ भी छत डालनी है तो अभी हम ही डालते थे। तो भाई पांडव भवन में जो ओम प्रकाश भाई का ट्रांसपोर्ट का जो रूम है उसके ऊपर छत डालनी थी, तो बाबा ने बोला बच्चे ये इतने यहां से यहां लेके छत डालनी है तो सलिया जो होता है ना, सलिया को बीच में तार लगाना पड़ता है। तो पहले तो अपने को कुछ मालूम नहीं था, बाबा ने बोला बाबा बताएंगा, और बाबा ने फिर विश्व रतन दादा को बोला दो तार लेके आओ, दो सलिया लेके आओ और तार लेके आओ और एक खिला लेके आओ। वो फिर बाबा ने तार रखी, जहां क्रॉस होता है वहां तार लगाना पड़ता है और खिले से खींचना होता है और फिर घुमाना होता है। देखो बच्चे ऐसा करने का है और पूरी छत आप लोगों को कर देने की है। तो जैसे जैसे बाबा ने बोला है ना तो फटाफट ऊपर चल के छत का काम शाम तक कर दिया। फिर बाबा को जाके बताया बाबा ये छत का काम हो गया है, तो बाबा वापस आएंगे गोद में लेंगे टोली खिलाएंगे फिर बोलेंगे अच्छा बच्चे अभी कल आना, कल बाबा आप बच्चों को दूसरी सेवा देगा। फिर पांडव भवन में पेंटिंग का काम था, बारी दीवालों को कलर लगाना सब। पांडव भवन में बाहर के मजदूर कोई भी नहीं आता था, यज्ञ के भाई बहन ही पांडव भवन में ये काम करते थे, इसलिए पांडव भवन इतना हम बच्चों को खींचता है। और साकार बाबा की कर्मभूमि है तो फर्क तो पड़ता ही है। तो बाबा हर कार्य में बच्चों को पहले सिग्नल भी देता है कि बच्चे ऐसा होने वाला है, और बाप का बाबा उसकी मदद भी करता है और बताता भी है कि क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है वो भी बाबा बता देता था। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए, तो एक बार हमको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने के बाद टेम्परेचर 104 के ऊपर गया, तो लौकिक घर वाले अपने हिसाब से वो ठंडा पानी लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं, वो ठंडा कर रहे थे, पाँव को भी ठंडा कर रहे थे। तो हमने बोला अपना तो डॉक्टर शिव बाबा है तो बाबा के पास जावे। हमने बाबा को जाके बताया कि लौकिक घर वाले ऐसा बोलते हैं कि टेम्परेचर 104 से भी ऊपर जा रहा है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा ठीक कर देगा। तो बाबा ने वहां अपना कमरा इमर्ज किया, और बाबा की जो खटिया है अभी भी ट्रांसलेट बाजू में जो खटिया रखी है, हमको बोला बच्चे इस पर सो जाओ, और जैसे अपन मच्छरदानी डालते हैं ना वैसे कांच की दीवार सब बाजू से आ गई। और फिर बाबा ने बोला अभी बाबा तुमको शांति का दान देगा, और जैसे बाबा की दृष्टि पड़ती गई टेम्परेचर धीरे 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 नॉर्मल आ गया। और जैसा हमारा टेम्परेचर 97 तक आया तो मैं देहभान में आ गया, और फिर मैंने जोर से चिल्लाया अरे मैं गिरा, तो लौकिक घर वाले तो खटिया के बाजू में बैठे थे, बोलते आप किधर गिरे हैं, आप तो बेड पर ही है। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं सूक्ष्म वतन से साकार वतन में गिरा हूं, इसलिए मैंने जोर से चिल्लाया अरे मैं गिर गया। तो फिर मैं कहा नहीं नहीं बाबा के जाके बाबा को बोलना चाहिए ना मेरी गलती हो गई, तो मैं वापस बाबा के पास गया। फिर बाबा ने बताया बच्चे बाबा के साथ आंख मिचोली का खेल नहीं करो, जब तुम बच्चे आत्मभिमानी होते हो तो बाबा बच्चों को देख सकता है। और जब तुम बच्चे देहभान में आ जाते हो तो बाबा बच्चों को ढूंढता है, मेरा बच्चा किधर गया, मेरा बच्चा किधर गया। इसलिए सदैव आत्मविज्ञान होकर रहेगा तो बाबा देखता रहेगा और बाबा हर बच्चों की संभाल करेगा। तो तब से हमने नियम बना दिया, बाबा के साथ आंख मिचोली का खेल तो नहीं खेलने का, अपन आत्मविज्ञानी रहेंगे तो बाबा हमको देख सकता है। फिर उसी टाइफाइड में शरीर का टेम्परेचर कम हो गया, डाउन हो गया। मैं कहा चलो बाबा को जाके बताते हैं। बाबा को जाके बताया कि घर वाले ऐसा बोलते हैं कि टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, बॉडी ठंडी हो रही है। बाबा ने कहा नहीं, मैं दवाई बताता हूं। तो बाबा जानता सब कुछ है और जो चाहे वो कर सकता है, मगर जो प्रकृति का नियम है वो भी बाबा तोड़ता नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये जो लक्ष्मी नारायण है इतने सजे सजाए क्यों है, उस पर आप सोचो कि ये लक्ष्मी नारायण को इतने सजे सजाए क्यों दिखाए हैं। तो फिर जैसा हमने सोचना शुरू किया तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता गया, और जैसा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो वापस हम नॉर्मल हो गया। तो फिर वापस ऐसा ही हुआ, अरे मैं क्या, मैं तो वापस साकार लोक में आ गया, वापस बाबा के पास गया। तो बाबा ने कहा बच्चे लक्ष्मी नारायण इतने सजे सजाए क्यों हैं। तो फिर जैसे हम लोग बताते हैं वैसे बाबा को उत्तर दिया। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, ये कान इसलिए सजे सजाए है क्योंकि जो बच्चे मेरी मुरली रोज सुनते हैं उसके कान सज जाते हैं। अगर हम बाबा की मुरली रोज सुनते हैं तो हमारे कान सजेंगे, और जो बच्चे मुख द्वारा मेरा परिचय अन्य आत्माओं को देते हैं तो उनका गला सजेगा। और जो बच्चे यज्ञ सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, उनके हाथ सज जाएंगे। और जो बच्चे अन्न की परहेज रखते हैं उसको कमर पट्टा मिल जाएगा। और जो बच्चे सेवा के लिए धक्के खाते हैं, कभी हम मिनिस्टर के पास जाते हैं तो मिनिस्टर बोलता है आज नहीं है, कल आओ, आज मैं बाहर जाता हूं, फिर वो हॉल बुक करने जाते हैं तो उसमें धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, आना जाना पड़ता है, तो हमारे पांव सजते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ मुरली सुन के हम लक्ष्मी नारायण सेवा करके भी हम लक्ष्मी नारायण तो बन जाएंगे, मगर सजाए सजाए कर तब बनेंगे। हर कर्म इंद्रिय को सेवा में लगाना है, जब हर कर्म इंद्र को सेवा में लगाएंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे सजे सजाए बन सकते हैं। तो ये बाबा ने उसका रहस्य बताया कि लक्ष्मी नारायण इतने सजे सजाए क्यों हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत संपत्ति है इसलिए वो सोना खरीद किया है और वो लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर कर्म इंद्रियों को सेवा में लगाया है। और बाबा का नाम नारायण क्यों पड़ा, हमारा लक्ष्य है ना नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, तो बाबा को नारायण नाम क्यों पड़ा, श्री नारायण क्यों बोलते हैं, उसका रहस्य क्या है। तो नारायण इसलिए कहते हैं जो नर रण में नहीं गया वो नारायण बना, रण माना बैटलफील्ड। जो नर बाबा ने माया के साथ, साकार बाबा ने माया के साथ कभी भी युद्ध नहीं किया है इसलिए बाबा को युधिष्ठिर कहते हैं। तो जो नर बैटलफील्ड में नहीं गया है इसलिए उसको नारायण कहा जाता है। और लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है, मम्मा जब फर्स्ट टाइम यज्ञ में आई और वो चप्पल निकाल रही थी तो बाबा ने कहा ये कलप पहले वाली राधे आ गई। और ये महावाक्य मम्मा ने उस समय सुन लिया और मम्मा ने अपना लक्ष्य पक्का कर लिया कि मैं ही राधे बनने वाली हूं। तो जिसने अपने लक्ष्य को पक्का किया वो लक्ष्मी बन गए। तो ये जो लक्ष्मी नारायण नाम है उसके पीछे क्या राज है वो भी बाबा बताता है। ऐसे बाबा के साथ चलते चलते आगे बढ़ते गए तो हमको एक बारी माना कुछ समय पहले आंखों में मोतिया हुआ था, एक आंख में मोतिया हुआ था, मगर हमको मालूम नहीं था कि हमको कोई मोतिया हुआ है। मैं तो कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा था तो फिर बाबा ने कहा बच्चे उठो, तो फिर मैं उठ गया और फिर बाबा ने बोला घड़ी में कितना बजा है, हमने कहा 11 बजा है, बोलता है अच्छा एक आंख बंद करो, तो हमने एक आंख बंद की, अभी कितना बजा है, मैं कहा 11, अच्छा दूसरी आंख बंद करो, तो मैं कहा अभी कितना बजा है, मैं कहा बाबा घड़ी दिखाई नहीं पड़ती है। तभी बाबा ने बताया तुमको मोतिया हुआ है, तुम डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करो। माना हमारे अंदर क्या बीमारी है वो भी बाबा अपने आप बता देता है। और फिर डॉक्टर के पास जाके इलाज किया और ठीक हो गया। तो अगर बाबा के साथ हमारा लगातार कनेक्शन जुटा रहता है तो बाबा हर चीज बताता है। ऐसा नहीं है कि बाबा कितने भी बच्चे होने दो, बाबा सब बच्चों का ध्यान रखता है। लौकिक बाप भी ऐसा होता है ना, घर में जितने भी बच्चे होते हैं सबका ध्यान रखता है। एक बार क्या हुआ था, बॉम्बे में महाराष्ट्र जोन की मीटिंग रखी थी और भाइयों का जो रहने का जो फ्लैट था उसका हमको चार्ज दिया था कि ये भाइयों को गाड़ी में लेके जाना, गाड़ी में लेके आना, फ्लैट पर छोड़ के आना और चाबी अपने पास रखना, ताकि वहां 8-10 भाई रहते किसको बीच में फ्लैट में जाना हो तो मेरे से चाबी लेंगे और जाके आएंगे। तो चाबी सबको मैं मीटिंग के लिए लेके आया और फिर संतोष दीदी से बात कर रहा था। संतोष दीदी ने बोला गाड़ी लेके जाओ और ये सामान लेके आओ। तो मैंने खिसे में जब गाड़ी की चाबी निकाली उसके साथ वो फ्लैट की चाबी गिर गई, गार्डन में गिर गई। उस समय अपने पास कोलीवाला का गार्डन था तो गार्डन में चाबी गिर गई। मुझे मालूम नहीं था कि चाबी गिर गई है। तो फिर सब काम हो गया, मीटिंग पूरी हो गई, फिर सभी ने बोला हमको घर लेके चलो फ्लैट में। तो वहां जाके देखा तो किसे में चाबी नहीं। तो फिर जिसने फ्लैट दिया था उससे डुप्लीकेट चाबी तो हमने मंगा ली, मगर उसने कंडीशन डाला कि अगर कल तक आपकी चाबी नहीं मिलेगी तो हमारे तीनों लॉक आप बदली करके देना और नया चाबी हमको दे देना। तीन लॉक थे उसके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कहा अभी बाबा को तो बताना पड़ेगा चाबी गुम हो गई है। तो अमृत वेले उठा और बाबा को बताया बाबा ऐसा हुआ है चाबी गिर गई है और लैंडलॉर्ड ने ऐसा कंडीशन डाला है। तो बाबा ने कहा चाबी तो गार्डन में है और इस एरिया में भी है, एरिया भी हमको बता दिया इस एरिया में है। तो मैंने झटके स्नान पानी किया और गाड़ी लेके गार्डन पहुंच गया और बाबा ने जो एरिया बताया था वो एरिया को पूरा हमने लक्ष्मण रेखा डाल दी, ताकि वहां कोई चले तो चाबी को और कहां फेंक नहीं देवे या चाबी मिट्टी में दब नहीं जावे। तो वो काम तो कर दिया। फिर संतोष दीदी को मुरली के लिए लेके आया, संतोष बहन ने मुरली चालू की, फिर मैंने एक जगह खड़ा हो गया। मैंने बाबा को बोला बाबा अभी बताओ किधर है चाबी। तो बाबा ने बोला चलना शुरू करो। तो चलना शुरू किया, फिर थोड़ा स्टेप चला, फिर बाबा ने कहा रुक जाओ और पांव के नीचे देखो। तो जैसा पांव के नीचे देखा चाबी थी। तो बाबा ऐसे हर चीज बता सकता है जब हमारी लाइन बाबा के साथ क्लियर है, तो अभी से हम सभी को ये प्रैक्टिस चालू रखने की है, बाबा के साथ बातें करने की। अगर बाबा के साथ बात करते हैं तो बाबा जो टचिंग करता है वो टचिंग हमको अंत के समय में काम आएगी। तो वो चाबी फिर निकाल के, फिर चाबी लेके मैंने लैंडलॉर्ड को फोन कर दिया कि चाबी मिल गई है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप ताला बदली मत करो, जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जावे तो मुझे चाबी रिटर्न कर देना। तो आप हमारे पास जो भी समस्या आवे, बाबा के पास अमृत वेले चले जाओ, बाबा उसका इलाज अपने आप सहज बता देता है। फिर सर्विस में, जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में हम सर्विस करते थे, और उन दिनों में 1962-63 में और करीबन 65 में कंप्यूटर आ गए थे, और शुरू अभी तो हर एक के टेबल पर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में एक कंप्यूटर रूम रहता था ऑफिस में, वहां जाके जिसको भी जो काम करना है वो करके वापस आते थे। तो कंप्यूटर सीखने का था, तो हमने अपने बॉस को बता दिया। मैं तो 10 से 5:30 अपना जो ऑफिस टाइम है उस समय करेगा, बाकी मैं एक्स्ट्रा ऑफिस में बैठेगा नहीं कंप्यूटर सीखने के लिए। उसने कहा ऑफिस का रूल है हर एक को कंप्यूटर सीखना है, आपको वो टाइम देना पड़ेगा। मैं कहा आप मुझे कंप्यूटर का किताब दे दो, मैं सीख लूंगा। उसने कहा ये किताब है, आप सीख लो, जब इनका ट्रेनिंग पूरा हो जावे तो आप अपना काम सारा कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर देना। मैं कहा ठीक है। तो किताब से हम कंप्यूटर तो सीख गया। उन दिनों में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, बॉम्बे में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रोड पर लगी हुई है उसका बिल मैं ही बनाता था। तो एक बारी मधुबन आने का था, तो हमने बॉस को जाके बोला हमको माउंट आबू जाना है, बाबा को मिलने को जाना है। तो उसने कहा ये जो स्ट्रीट लाइट बिल है वो आप बना के हमको दे दो, फिर आप जा सकते हैं। तो मैंने बिल बना, बिल के लिए गया कंप्यूटर रूम के अंदर गया, तो कंप्यूटर चालू हो गया और मैंने अपना बिल बना दिया। जैसे मैं बाहर आया तो कैश डिपार्टमेंट वाला पहले जाके आया था, तो कैश डिपार्टमेंट वाला ये कंप्यूटर चलता है क्या? मैं कहा चलता है, मैंने तो ये प्रिंट लिया। तो बोलता है मैं गया तो नहीं चलता है। तो उसने चालू किया तो कंप्यूटर चला नहीं। मुझे कहा तुम हाथ लगा के, तुम्हारा वो शायद सुनता है, तुम हाथ लगाओ। तो मैंने हाथ लगाया तो कंप्यूटर नहीं चला। मैं कहा देखो नहीं चलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोलता आपका टाइम चलता है, मेरे टाइम नहीं चलता है, ऐसा कैसा? मैं कहा भाई मैं कैसे बताऊं। वो बिल जब करेक्ट देखा तो एक बिल में मिस्टेक निकली। मैं कहा अभी तो ये बिल तो करेक्ट करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो वापस मैं कंप्यूटर रूम में गया और हमने बोला बाबा एक बिल में करेक्शन है। तो कंप्यूटर चालू हो गया, हमने वो बिल प्रिंट किया, सब बिल बना के उसको दे दिया, बॉस को दे दिया। बोलते अभी जाओ। तो फिर वापस वो भाई आया कैश डिपार्टमेंट का, बोलता है वापस चालू करो। फिर उसके सामने मैंने आप वापस हाथ डाला, स्विच ऑन किया, चले ही नहीं। बोलता है ऐसा कैसा, तुम्हारा काम होता है तो चलता है। मैं कहा मैं कैसे बताऊं, मेरा हम तो भगवान को याद करके काम करते हैं तो हमारा काम तो हो जाता है। बोलता है अभी मेरे लिए याद करो, चालू करो। मगर वो कंप्यूटर बिगड़ा हुआ था, वो तो बाबा की मदद थी, उसकी बॉस ने कंडीशन डाली थी कि ये बिल बना के जाओ, स्ट्रीट लाइट बिल बना के जाओ, फिर तुम माउंट आबू जा सकता है। तो मैं कहा अभी बाबा ऐसी मदद भी करता है, अगर मधुबन आना है और आपकी सच्ची दिल है तो आपका सब काम, जो कंडीशन जो कोई डालता है घर लौकिक वाले पर, सब काम आपका फिलफिल हो सकता है, ये गारंटी है। कईयों को ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है, ऐसा होता है, आरएसए भी होता है। मगर अगर आपकी सच्ची दिल है, भले आप बैठ के भी आएंगे मगर बाबा की याद होगी, आप थकेंगे नहीं, ये गारंटी है। बाबा सदैव बच्चों के साथ रहता ही है। हम बाबा को, बाबा का हाथ हम छोड़ते हैं, बाबा कभी भी अपना हाथ नहीं छोड़ता है। इसलिए सदैव आत्मविमानी होकर रहना चाहिए, तो बाबा हम बच्चों को देख सकता है और फिर बाबा हर कार्य में अपने को मदद भी करता है। तो ऑफिस में काम करते समय आपको तो सब मालूम है, अपने नियम है, बाहर का खाने का नहीं, सिगरेट नहीं वगैरह पीने का। तो ऑफिस में जब अपन जहां बैठते थे तो सबको मालूम है ये हम तो बाहर का खाता नहीं है, तो अपने कलीग्स अपने आप वो पीउन को बोलेगा, अरे भाई ये सांप के पास नहीं जाना, ये सांप ऐसा चीज खाते नहीं है। और कोई कस्टमर भी आएगा इंक्वायरी के लिए तो अपना असिस्टेंट ही उसको बोलेगा, आपके हाथ में सिगरेट है वो पहले बाहर फेंक के आओ, सांप हमारा सिगरेट नहीं पीता है, आप सिगरेट लेंगे लेके जाएंगे तो सांप आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो फेंक के आते थे। अगर हम नियमों में पक्के रहते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे, हमको कुछ भी नहीं करना होता है, अपने आप दूसरे हम बच्चों की सेवा में हाजिर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और जब रिटायर होने का टाइम आया, जब लास्ट डे था, तो बॉस ने बोला पहले तो मैं आपको सेकंड करता था, अभी मैं सेकंड नहीं करूंगा क्योंकि आप ऑफिस से रिटायर हो गए, अभी आप मेरे अंडर काम नहीं करते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्ते करके मैं आपको सी ऑफ करता हूं और मैं खुद आऊंगा आपके सेंटर पर छोड़ने। वो खुद आया क्योंकि मैं तो ऑफिस से सेंटर पर ही आता था, तो सेंटर पर आके छोड़ के गया, बोलता है आप मेरे अंडर नहीं है, आप मेरे से भी बहुत ऊंचे हैं, इसलिए मैं आपको नमस्ते करता हूं, हाथ मैं आपको एक्चुअली हाथ भी नहीं लगा सकता हूं, मगर आप मेरे अंडर थे तो मैं आपको सेकंड करता था, मगर अभी मैं नहीं आपको करूंगा क्योंकि आप अभी मेरे अंडर नहीं है। तो अगर हम अपने नियम में पक्के रहते हैं तो किधर भी प्रॉब्लम नहीं आता है। एक बल एक भरोसा रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती, जो साकार अव्यक्त मुरली में कितने प्रकार के निश्चय आते हैं, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, अगर ये चार नियम निश्चय पक्के हैं तो आपका कुछ भी कोई कर नहीं सकता है। ऐसे दिन तो बहुत, बाबा के साथ के अनुभव तो बहुत बीतते गए, और अभी कुमार जीवन में भी बाबा अभी भी मदद करता है, और साकार मुरली जो बाबा चलाता है, सभी साकार मुरली सुनते हैं ना, मधुबन मुरली तो रोज सुनते हैं, मगर आपको मालूम है मुरली जो है बाबा हर बच्चे को एक एक को मुरली सुनाता है। उसका प्रूफ क्या है, बाबा जो मुरली है ना क्लास में, आपको लगता है कि बाबा ने क्लास में मुरली चलाई, मगर बाबा जो है इंडिविजुअल मुरली सुनाता है। उसका प्रूफ क्या, मुरली का पहला शब्द क्या है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चों नहीं है, माना बहुवचन नहीं है, सिंगुलर है, बाबा मीठे बच्चे करके मुरली सुनाता है, मानमा हर बच्चे को बाबा इंडिविजुअल मुरली सुनाता है, बाबा जनरल मुरली नहीं सुनाता है। और बाबा मुरली सुनाने के बाद बाबा बोलता है गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो हम अमृत वेले उठ के बाबा को, सब बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, मगर अमृत वेले गुड मॉर्निंग बोलने के बाद नमस्ते बोलते हैं, क्योंकि मुरली में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। तो जब भी मुरली अमृत वेले बाबा को अगर हम गुड मॉर्निंग करते हैं, उस समय हमको नमस्ते भी करना है। अगर कोई नहीं करता है तो उसका रिटर्न हमको बाबा को देना है, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और दिनचर्या में ट्रैफिक कंट्रोल आता है ना, तो अमृत आप सभी हम सभी का अनुभव है कि बाबा को जब गुड मॉर्निंग करते हैं उस समय हमारा सुबह का टाइम तो बहुत अच्छा जाता है और बाद में हमारा याद का चार्ट थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, 12 बजे का जब ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो वापस वतन में जाने का, बाबा को गुड आफ्टरनून करके आने का, गुड आफ्टरनून और नमस्ते करके आने का, तो बाबा आपका दोपहर को भी ध्यान रखेगा। जब शाम को 5:30 बजे तो वापस वतन में जाने का और बाबा को गुड इवनिंग करके आने का और नमस्ते करने आके, फिर बाबा आपका शाम का भी ध्यान रखेगा और गुड नाइट तो करते ही है, गुड नाइट और नमस्ते तो करते हैं। और अभी के दिनों में तो आपने मुरली में भी सुना होगा, बाबा ने कहा है सोने के पहले आधा घंटा योग करना है और सारी दिनचर्या बाबा को सुना देने का, प्लस माइनस जो कुछ भी है सारी दिनचर्या बाबा को सुना दो और जब आपकी बुद्धि खाली हो जाएगी तो आपको सहज नींद आ जाएगी, आपको नींद का गोली भी लेना नहीं पड़ेगा और बराबर अमृत वेले बाबा आपको उठा भी देगा। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल के समय वतन में 4 बारी वतन में जाने का गोल्डन चांस है, बाबा को मिलने का गोल्ड चांस है। अमृत वेले तो हम जाते ही है, अभी आफ्टरनून में जाने का, इवनिंग में भी जाने का और नाइट में तो हम लोग जाते ही है, तो वैसे 4 बारी बाबा को मिल के आएंगे तो सारा दिन हमारा अच्छा जाता है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं पड़ती है। और बाबा ने तो बोल दिया है बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, तो हमारी जो भी दिन में प्रॉब्लम आते हैं बाबा को बता देंगे, बाबा उसका हल भी बता देता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आएंगे भी नहीं। अभी किसको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरी बातें सुनाऊंगा। अपना हमारा खुद का नियम भी ऐसा है, अपने जितने भी स्थूल साधन है, अपना टेप मशीन है, गाड़ी है, मानव व्हीकल है, जितने भी साधन है उसके साथ हम बात करते हैं और बात करने के बाद वो अपने आप चालू हो जाता है। कई बार सेंटर पर जाते हैं ना, जब सुबह जाएंगे सेंटर पर, बहने कहती है आज टेप मशीन चलता नहीं है, मैं कहा नहीं चलता है, और वहां जाके बोलेंगे अब चलो तो वो बराबर चालू भी हो जाता है, क्योंकि हम इनको भी अगर हम योगदान देते हैं। गाड़ी के साथ तो मैं खास ऐसा करता हूं, जिस दिन भी संतोष दीदी को जिधर भी लेके जाना है तो पहले से प्रोग्राम मिलता है ना कि आज पुणे जाने का है, आज नासिक जाने का है, आज सोलापुर जाने का है, तो अमृत वेले बॉम्बे से लेके सोलापुर तक, नासिक तक या पुणे तक जो रोड से जाने वाले हैं वो रोड को मैं पूरा योगदान दे देता हूं, ताकि वो रोड में हमको कहां भी विघ्न नहीं आवे। और गाड़ी को भी बता देता हूं कि अपने को वहां जाना है और वापस आना है, आपको बीच में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने का है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो और फिर मैं गाड़ी का एक ट्रायल ले, जिस दिन निकलना होता है ना उसके अगले दिन शाम को मैं गाड़ी का ट्रायल लेता हूं। मैं कहा आपको कुछ भी प्रॉब्लम अभी मुझे बता देना, तो जैसे गाड़ी निकलेगा 0.5 किलोमीटर चली और गाड़ी बंद पड़ गई, फिर हमने मैकेनिक को बुलाया क्या प्रॉब्लम है, बोलते बैटरी आपकी बराबर नहीं है, आप इसको रिचार्ज करना है, आप ये नया बैटरी लेके जाओ, आप पुणे जाके आओ तब तक मैं इसको चार्ज कर देता है और फिर आप बदली कर लेना। तो जब रास्ते को भी जहां भी आपको जाना है रास्ते को योगदान दो, जहां भी आपको सेवा के लिए जाना है वो रास्ते को पूरा योगदान दे देना, तो आप निर्विघ्न वापस अपने घर आ जाएंगे। और व्हीकल को बता देंगे कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो बीच में कुछ भी करेगा नहीं, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है हम लोगों को कभी भी रास्ते में रुकना नहीं पड़ा है, भाई आज टायर पंचर हो गया, आज ये हो गया, कुछ भी नहीं। गाड़ी का ट्रायल लेते समय टायर पंचर की भी एक बार हुआ था, जब गाड़ी हमने वापस कंपाउंड में डाली तो टायर पंचर हो गया, तो फिर हमने टायर बदली कर दिया और नेक्स्ट डे पुनः चले गए। तो ये जितने भी साधन हैं, सब साधन हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं, उसको आप जो भी डायरेक्शन देंगे वो डायरेक्शन निभाते हैं, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। तो ऐसा अगर हम सबके साथ चलते हैं, इवन अपने जो भाई बहन हैं जिनसे हमको सेवा लेनी है, उसको भी अगर आप अमृत वेले, हमारा तो प्रोग्राम होता है ना, आज ये करना है आज वो करना है, तो अमृत वेले भी वो भाई बहनों को अगर हम योगदान दे देते हैं तो हमारी जो सेवा है पूरी निर्विघ्न चल सकती है, क्योंकि बाबा हर टाइम हर बच्चे को मदद के लिए तैयार है। और बाबा मदद तो नहीं करता है, साथ में युक्ति भी बताता है किस तरह से चलना है। तो इस तरह से अगर चलते हैं तो सारा जीवन निर्विघ्न चल सकता है। तो अभी जो भी अमृत वेले या तो क्लास में नहीं जाते हैं वो पक्का कर लेवे, अगर आपको कान सजाने हैं तो मुरली जरूर सुननी पड़ेगी, और गला सजाना है तो बाबा का परिचय औरों को देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका गला सजेगा कान नहीं सजेगा तो कैसा लगेगा। इसलिए हर कर्मेंद्रियों को सेवा में जरूर लगाना है, तभी हम लक्ष्मी नारायण जैसे सजे सजाए बन सकते हैं। अच्छा, और कुछ पूछना हो तो अन्नपूर्णा बहन। ठीक है, फिर और भी कोई बातें कर लेते हैं। हाँ, वो तो बराबर है, आप सभी ने अनुभव भी किया होगा, हर एक अपने घर में मुरली पढ़ता है, हम सभी अपने अपने घर में मुरली पढ़ते हैं, मगर जब सेंटर पर आते हैं तो एकाध पॉइंट जो है ना हमको टच होता है, अरे ये पॉइंट तो हमको ध्यान में ही नहीं आया था। जब सेंटर पर मुरली सुनते हैं तो वो फर्क पड़ता है। हम हर एक अपने घर में मुरली पढ़ता है, अमृत वेले स्नान होने के बाद हम लोग सब मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान स्नान कर लेते हैं, मगर जब सेंटर पर मुरली, टीचर बहने जब सेंटर पर मुरली चलाती है तो हमको खुद को भी अनुभव होता है, अरे ये तो पॉइंट हमने मिस कर दिया था, अभी हमको टच किया। तो ऐसा होता है, इसलिए सेंटर पर जाना, नहीं तो बाबा हमारा टीचर कैसा बना। बाबा कहते हैं मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। तो ये जो है बाबा के साथ हमारे तीन संबंध है, वो संबंध को हमको निभाना है। बाप के रूप में तो हम निभाते हैं, सदगुरु के रूप में हम श्रीमत पर भी चलते हैं, तो टीचर के रूप में हमको प्रेजेंट मार्क क्लास में देनी है। जब प्रेजेंट टीचर मार्क का अगर क्लास में प्रेजेंट रहती है तो आपने उसका बाबा का रिस्पेक्ट रखा है। तो ये जो बाप, टीचर और सदगुरु है, ये थ्री फेज सप्लाई है। आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी में जब तक थ्री फेज सप्लाई नहीं होता है तो कोई भी चलता नहीं है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे वाटर पंप है, जब तक उसको थ्री फेज सप्लाई नहीं मिलेगा तो वाटर पंप भी चलता नहीं है। तो ये बाप, टीचर और सदगुरु, ये हमारे थ्री फेज सप्लाई है। अगर तीनों रूप से बाबा को याद करते हैं तो आत्मा रूपी जो बैटरी है वो इमीडिएट चार्ज हो जाती है, उसका चार्जिंग पावर बढ़ जाता है। नहीं तो सिंगल फेज से बाप के रूप में याद करेंगे तो सिंगल फेज है, मगर सदगुरु और टीचर के रूप में याद करेंगे तो थ्री फेज सप्लाई है। आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, एक आपको इंस्टेंस सुनाता हूं, आप भले बैठिए। डॉक्टर निर्मला बेन जो ज्ञान सरोवर की इंचार्ज थी, वो एक बारी क्लास में बैठी थी, तो बाबा ने उसको पूछा, बच्ची मुझे कहाँ याद करती हो? तो डॉक्टर निर्मला बेन ने बोला, बाबा तो आप तो सामने बैठे हैं ना, तो हमको हम तो आपको सामने ही याद करेंगे। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, मुझे जो भी याद करना है मुझे परम धाम में ही याद करना है। जब हम बाबा को परम धाम में याद करते हैं, जितना टाइम भी हम परम धाम में बाबा को याद करते हैं, तो हम साकार लोक से अलिप्त हो जाते हैं। साकार लोक से नष्टोमा बनने की एक ही विधि है, घड़ी घड़ी परम धाम जाओ, घड़ी घड़ी अशरीरी बनो। जितना टाइम आप अशरीरी बनेंगे तो ये साकार दुनिया जो हम बच्चों को खींचती है वो खींचना बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा को तो याद परम धाम में ही करना है, तो साकार शरीर से हम अलिप्त हो जाएंगे और वतन में बाबा के साथ घर में चले भी जाएंगे। इसलिए बाबा को तो परम धाम में ही याद करना है। वो भाई ने अपने रहस्य से कुछ बताया होगा, मगर यथार्थ ज्ञान तो वही है, बाबा को परम धाम में याद करना है, तो हम साकार सृष्टि से अलिप्त हो जाएंगे। ये उसका रहस्य है। इसलिए बाबा को बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में याद करो। और बाबा की मुरली में आपने बहुत बारी पढ़ा भी होगा, बाबा बैठकर बच्चों को सुनाते। मुरली में जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना, बाबा बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। तो बाबा का रहस्य क्या है? बाबा ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठकर मुरली सुनाते हैं। तो जब भी हम योग में बैठते हैं, हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट बाबा को याद करते हैं। डायरेक्ट बाबा को याद कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठी हूं। बाबा हमेशा कहते हैं कुर्सी पर, जज अगर कुर्सी पर बैठा है और जो निर्णय देता है वो फाइनल देना जाता है। अभी जज आपका दोस्त है, आप उसके घर में जाएंगे और बताएंगे, देखो ये हमारा एग्रीमेंट है, आपको क्या क्या डिसीजन आएगा? तो बोलते हैं ये आपके फेवर में ही आएगा, मगर वो फेवर में उस समय बोल दिया, मगर फाइनल नहीं गिना जाता है। और वही जज कुर्सी पर बैठता है और जब डिसीजन देता है कि ये एग्रीमेंट इसके फेवर में है, तो वो कायदा बन जाता है, माना वो रूल बन जाता है, वो ऑर्डर बनता है। वैसे हम जब भी बाबा को याद करें, हम झटके से बाबा को याद करते हैं, मगर पहले मैं आत्मा भूगुट में बैठी हूं, अपने सिंहासन पर बैठो, अपने सिंहासन पर बैठ के फिर बाबा को याद करो, तो वो प्रकृति भी आपका ऑर्डर मानेगी। कई तब हम प्रकृति का ऑर्डर करते हैं मगर ऑर्डर मानती नहीं है। उसका कारण ये है कि अपने स्वस्थिति में नहीं बैठे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान यहाँ भ्रुकुटी में बैठा हूं, अपने सिंहासन तखत पर बैठो, अकाल तख्त पर बैठो और फिर प्रकृति को ऑर्डर करो, देखो प्रकृति आपका ऑर्डर मारेगी। इसलिए जब भी बाबा को याद करना है, पहले अपने तखत पर बैठो और फिर अगर आप बाबा को याद करेंगे तो हमारी याद पहुंच जाती है, और फिर वतन में तो परम धाम में तो जाना ही है, और बाबा को वहां बैठ के याद करेंगे तो फिर याद हमारी शक्तिशाली हो जाएंगी। ठीक है, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन भाई जी, आपने केवल बाबा के अंग संग के अनुभव नहीं सुनाए, तो आपने अव्यक्त बाबा से आज सभी बच्चों को कैसे पालना मिलती है, कैसे हम पालना पाने के अधिकारी बन जाते हैं, कैसे बाबा अंग संग रहते हैं, इसका बहुत सुंदर अनुभव सुनाया। हम भी सदा इसी कोशिश में रहेंगे कि हम सदैव बाबा से अनुभव करते रहेंगे और बाबा की मदद पाते रहेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।